नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानु शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, नीति निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में सहायक होगी। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। राष्ट्र आज भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने अमरीकी नौसेना द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी को ईरान की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में साल भर चलने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सदियों के पर्यटन, सर्दियों के खेलों और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक पसंदीदा जगह के तौर पर राज्य की बढ़ती लोकप्रियता को रेखांकित किया और लोगों से देवभूमि में साफ सफाई बनाए रखने का भी आग्रह किया। देहरादून में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए 12 महीने पर्यटन का चलना बहुत जरूरी है। कैलाश और ओम पर्वत की अपनी 2023 की यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तब से श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि जहां पहले सर्दियों के दौरान केवल कुछ सौ लोग आते थे, वहीं 2025 में 40,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यह यात्रा की, जिससे स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के फायदे पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटकों की बढ़ती आबादी से मेहमान नवाजी, परिवहन और अन्य स्थानीय सेवाओं से जुड़े लोगों की आय बढ़ेगी। उन्होंने आने वाले कुंभ मेले का भी जिक्र किया और कहा कि धार्मिक अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उत्तराखंड आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और पवित्रता को बनाए रखना, पर्यटन को जारी रखने और राज्य के लिए लंबे समय तक आर्थिक फायदे सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं के नीति निर्माण और निर्णय लेने की सक्रिय भागीदारी से वर्ष 2047 तक विकसित भारत की यात्रा के दृष्टिकोण और मजबूत होगी। भारत की नारी शक्ति को लिखे पत्र में श्री मोदी ने कहा कि 16 अप्रैल को संसद नारी शक्ति वंदना अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन पर चर्चा और उसे पारित करने के लिए दोबारा सत्र शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि देश भर की महिलाएं विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का एक अनूठा अवसर मिलने पर खुश व्यक्त कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि 2029 के लोकसभा चुनाव और विभिन्न विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से लागू होती है तो देश का लोकतंत्र और अधिक मजबूत और जीवंत होगा। श्री मोदी ने कहा कि इस कानून को पारित करने में किसी भी प्रकार की देरी दुर्भाग्यपूर्ण होगी और ये महिलाओं के साथ घोर अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि जब देश की विधानसभाओं में महिलाओं की आवाज मजबूत होती है तो लोकतंत्र की आवाज भी मजबूत होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर पर अनेकों स्वयंसेवक समूह और लखपति दीदियां यह प्रदर्शित कर रही है कि आत्मनिर्भरता कैसे हासिल की जा सकती है और अन्य महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विज्ञान और नवाचार में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने दशकों से लंबित इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। तमिलनाडु में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आज चेन्नई में प्रदेश भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि एनडीए प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए, महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए और सालाना 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देगी। घोषणा पत्र के अनुसार भगवान मुर्गन का त्योहार थाई पुसम राज्य पर्व के रूप में मनाया जाएगा। दीपाथुन पर दीप जलाए जाएंगे, नशा संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा और सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा। महिला लघु और मध्य उद्यमों को बिना ब्याज के विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक मुश्त 50 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा और पहली बार स्नातक होने वाले को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी का आज पश्चिम बंगाल में कई चुनाव रैलियों का कार्यक्रम है। पार्टी सूत्रों के अनुसार वह पिंगला और सवांग में जनसभाएं करेंगी। इसके बाद वह तामलुक और जगत भलपुर में भी रैली करेंगी। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज विभिन्न चुनाव प्रचार कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री शाह उत्तर दिनाजपुर के कालियाजंग में रोड शो करेंगे। इसके बाद उनका दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर में और मालदा के मानिकच और गाचोल में रैलियों का कार्यक्रम है। राष्ट्र आज भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर स्थित लोक भवन में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने भी संसद भवन परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर श्री अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावनी ने ईरान के बंदरगाहों की अमेरिका द्वारा की गई नाकाबंदी की निंदा की है। श्री इरावनी ने इसे ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का गंभीर उल्लंघन बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरोस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे पत्र में इरावनी ने इसे वैश्विक शांति और दोनों पक्षों के लिए खतरा बताते हुए आक्रमण कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यह समुद्री कानून का उल्लंघन है। उन्होंने इस पर तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभारित वाहनों के लिए शुल्क वसूली को सुदृढ़ और तर्कसंगत बनाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क चौथा संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि इस संशोधन का उद्देश्य निर्धारित भार सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा बढ़ाना और राजमार्ग अवसंरचना की रक्षा करना है। संशोधन नियम कल से लागू होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में बैसाखी के अवसर पर गुरुद्वारा श्री रकाब जंग साहिब का दर्शन किया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित थे। अरुणाचल प्रदेश के खामती और सिंगपो समुदाय 3 दिवसीय सांकेन उत्सव मना रहा है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक ने राज्य के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पवित्र उत्सव सभी को भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए करुणा, शांति और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। अरुणाचल प्रदेश के युवा मामला विभाग ने सोमवार को बोमडिला के बुद्ध पार्क में वार्षिक रोजगार मेले का आयोजन किया। इस रोजगार मेले में 40 कंपनियों ने हिस्सा लिया। मेले का उद्घाटन करते हुए कानून, खेल और युवा मामला मंत्री केंटो जिनी ने इस तरह के पहलों के महत्व पर प्रकाश डाला और बेरोजगार युवाओं से उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। HCG कैंसर हॉस्पिटल ने सोमवार को ईटानगर में एक एक्सपर्ट कैंसर OPD शुरू किया है, जिसका मकसद पूर्वोत्तर में स्पेशलाइज्ड ऑन्कोलॉजी देखभाल तक पहुंच को बेहतर बनाना है। यह OPD पोलो हॉस्पिटल गंगा मार्केट में हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 8 बजे तक और शनिवार को सुबह लगेगा। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि इस दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।